Elhamdülillahi ve'da ve salatu ve selamu ala mullan nebiyyine ve'da. Allahümme salli ala seyyidina mullana Muhammedin madenil cüdi vel kalem. Allahümme salli ala seyyidina mullana Muhammedin ve alihi el fal ve marra. Allahümme salli ala seyyidina mullana Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve barik ve sellim. Amma ba'd. Allah Celle Celaluhu Rahman ve Rahim. İstonya में बेंतहा लजीज मजेदार खुश जायका चीजों को पैदा फरमाया, एक से एक चीज अल्लाह ने मुख्तलिफ की है, उसके जायके में एक अजीब कैफियत रखती है अल्लाह ताला ने। केला खाएं तो उसका बहुत मजा आएगा, ऑरेंज खाएं तो एकदम मजा चेंज हो जाएगा, ऑरेंज में से आप टेंजरीन खाएं तो उसका मजा मुख्तलिफ हो जाएगा, है ऑरेंज ही। आम खाएं सुभानअल्लाह, आम की किस्म बना दी अल्लाह, लगड़ा खो, चौसा खो, अपना हिंदुस्तान का खो, पाकिस्तान का खो, खाते हैं ना। तो इतनी बेबहा अल्लाह पाक ने नेमतें दे रखी इंसान को खाने के लिए, गोश्त चिकन पुलाव बनाओ, जर्दे बनाओ, हलवे बनाओ, मीठा खाओ, इतना खाओ कि शुगर हो जाए, इतना खा लेते हैं। तो आदमी बड़ा तेज है, हम भी बहुत तेज हैं, हमें पता है ये केला है, ये ऑरेंज है, ये फला है, ये हलवा है, ये पुलाव है, ये जर्दा है। तो इस काम के लिए हम एक काम करते हैं कि उसका टेस्ट लेने के लिए, मजा लेने के लिए ना हम हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, बल्कि ये कि आधा घंटा भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा पेट खराब हो जाए। तो पेट में खराबी नहीं है इनसे, क्यों रात का खाना खराब हो जाएगा, दिन का खाना, या शादी हो रही है वहां दावत है, पेट मेरा खराब ना हो जाए। स्टोमिक इतना एहतियात करते आदमी फिर सो मजे लेने के लिए कि खाने का मजा नहीं आएगा। खराब तो स्टोमिक होता है लेकिन मज़ा जबान नहीं लेती, क्योंकि सारा मज़ा स्टमक से कंट्रोल करते हैं ना मज़ा। अब इतने अच्छे से खाने लगे हैं, पेट खराब है, तो मज़ा तो नहीं आया ना खानों का, बड़ा पछताता है आदमी, खुशमारी तो नहीं खा सकता बेचारा, पेट खराब है उसका, बड़ा पछताता है, दवाइयाँ खाता है। तो ये तो गज़ाएं जो लगा समझ आ रही हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जितनी भी लजीज चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो चंद जानते हैं ना, कितने जायकेदार चीज़ें, हल्का जायका अजीब है। हम सबको एक तरफ फर्क दें उनकी लज्जतों को, उनके मज़ों को, उनके टेस्ट को, या ख़ास तौर पर इस समाज से बात है मेरी, तमाम लज्जतों को एक तरफ रख दें, इकट्ठा कर दें। लेकिन उसके मुकाबले अल्लाह ताला ने एक चीज ऐसा पैदा की है कि उसकी लज्जत का मुकाबला ही कोई नहीं, बहुत इतनी लज्जत है उसकी, इतनी लज्जत है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। कभी हमने सोचा ही नहीं कि जिसको लज्जत आ जाती है बस कहते हैं यह सब चीजें बेकार है, तो है कुछ नहीं, कहता सबसे बेहतरीन लज्जत है तो फिर जिस तरह पेट सही और लजीज खाने हो तो दिल करता है जल्दी जल्दी खाएं, हजम हो, खाएं और खाएं और खाएं। तो अल्लाह ताला ने उस चीज के अंदर लज्जत भी रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह डाइजेस्ट करने की हमें पूरी सलाहियत भी रखी है। ज्यादा खाएंगे ये चीजें जो ना रखी है तो पेट खराब होगा, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जितने ज्यादा खाओगे उतनी ताकत आएगी। कितनी बड़ी चीज है, कोई मुकाबला इसका नहीं है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। मालूम क्या चीज है, इसमें अल्लाह ने लज्जत रखी है, टेस्ट रखता है, मजा रखा है, मिठास रखी है, वो है जिक्र अल्लाह। फिर बोले क्या पता आप सुबह न लगा क्या टेस्ट है जो आपने बोले, केलेगा तो पता है, सुबह अल्लाह पता है आपको क्या चीज है, अल्लाह इसने तो जमीन आसमान भर दिया इतना टेस्ट, इतनी बड़ी चीज है ये। देखिए जिसको आए, मालिक बिन दिनार बहुत बड़े बुजुर्ग थे मालिक बिन, क्योंकि ये तो बुजुर्गों को आती है टेस्ट, हम जैसे नाले को नहीं आती, इसकी वजह क्या है, ये क्यों करते हैं सारी सारी जिक्र करते रहते हैं, अच्छा खाना छोड़ देते हैं, फिर वो खाने में लज्जत नहीं आती है, उनको जिक्र में लज्जत आती है। मौलाना रूम फरमाते हैं एक शेर है उनका, सुभान अल्लाह, कि जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूं तो मेरा पूरा जिस्म शीनी हो जाता है शहद की तरह, मीठा हो जाता है। पता है हमें पता ही नहीं। देखिए मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, पहले वो कितने ऊंचे बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, ऐसे लोगों को देखें, नाम उनका मालिक बिन दिनार, दिनार उनके एक वाक़ था जिसके उसको ये टाइटल दे के, बहुत बड़े अकाबर बुजुर्ग में से हसन बसरी के हम असर हैं, इनकी तो करामातें उनके बहुत बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचे बुजुर्ग थे। किसने पूछा ये दिनार क्या मतलब, मालिक बिन दिनार का इतने बड़े बुजुर्ग थे कि तशरीफ ले जा रहे थे दरिया के अंदर, कश्ती होती थी ना पहले कश्ती में, तशरीफ ले जा रहे थे किसी जगह, वो भी बैठ गए, दरिया पार करना था, जैसे हम बैस बस बैस में बैठे थे तो वो आ गया जो माई गिर, तो उसने भी पैसे निकालो किराया, उनके किराए तो नहीं है जी, क्यों बैठे क्यों तुम, कहते मैं क्या करता, मैं दरिया पार करना था, मैं बैठ गया लेकिन मेरे पास नहीं है, मस्कीन हूँ। ज़ाहिर वैसे आदमी तो आदमी कंसेशन देता है ना, इस्लाम भी कहते हैं। अच्छा ये बात है, तो जरूरत कैसी, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, फकीर आदमी को ज़्यादा मारते हैं ना लोग गरीबों को, तो इतना मारा वो बेचारे बेहोश हो गए, फिर उनको होश आया, तुम किराया दो ना मैं तुम्हें दरिया में फेंक देता हूँ, अभी दरिया में फेंकता हूँ। बस जब ये सुना तो उन्होंने ऐसे हाथ किया दरिया समुद्र की तरफ, दरिया की तरफ, हर मछली जो है एकदम ऊपर आ गई और हर मछली के मुंह के अंदर एक दिनार था और वो दिनार ही सोने का था, कि जा जो मर्जी आप जितना चाहे इन मछलियों से ले लें। उसने जब ये देखा, हम तो ऐसे हैं ना, हम बुजुर्गी थोड़ी मानते आदमी जब तक करिश्मा ना दिखा दे, कोई करामात ना दिखा दे। मिसाल के तौर पर आप किसी बुजुर्ग के सामने बैठे हैं ना, आपकी मस्जिद में गुआ बुझाता है, उसके पीर भी आप अपना पीर पास बैठते हैं, दूसरा बुझाता है, वो आपको कोई दिखा देता है जिन भूत, ऐसी तैसी जाने छोड़ देते हैं, फिर उधर शिकड़ी गायब हो जाती है, अकीदा उससे हो जाता है, क्योंकि ये तो जी साहिब कश्फ है, हम तो उनके पास जाते रहे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं है, कोई कश्फ नहीं देखा, कोई करामात में देखी, ये हम कर दें, बस जी उधर गया दुआ हमने करवाई, दुआ पूरी हो गई, हमने तो ऐसा ही किया, हमारा ये काम हो गया, हमारी दुकान नहीं चली थी दुकान चल गई, हमारा फला नहीं होता फला हो गया। सबसे बड़ी करामत अगर देखने जाते हैं किसी वली की, ये है कि आपके मुर्दा दिल को जिंदा कर दे, क्यों करते हैं मुर्दा को जिंदा, मुझे पता है, वो तो मुर्दा दिल को जिंदा कर देता है, तो जो मुर्दा को जिंदा कर दे उससे बड़ी करामत और क्या होगी, मुझे पता है। तो लेकिन दुनिया के वस्त हमने ये हमारे फला हो गया काम फला हो गया, ऐसे छोटे अकीदे मत रखें अल्लाह ताला के साथ। तो जब उसने देखा है ये तो इतना बड़ा बुजुर्ग, अब करामत जो देख ली वो कदम गिरी है, कि तब गिरने का क्या फायदा है, अब दूसरी करामत तुझे दिखाता हूँ, लेकिन छलांग मारी चलते चले गए दरिया के ऊपर, दरिया रास्ता छोड़ता चला गया और पार कर लिया सर किनारे पहुंच के। तो इतने बड़े बुजुर्ग थे, किसी ने पूछा जी आप इतना किस्से से जिक्र करते हैं आखिर वजह क्या है, तो मुस्का के देखा उसकी तरफ, ये फिक्र उनका जो पेश कर रहा हूँ आपको, अल्लाह वालों की बातें अलहामी होती हैं, ये हदीस में साबित है, कहते अल्लाह पाक ने जितनी भी लज्जतें रखी हैं तमाम दुनिया के अंदर जिन चीज़ों में रखी हैं लज्जतें, ये खाने से भी आती है, महसूस करने से भी आती है, ये नहीं आती, ये भी तो लज्जत है ना, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी बच्चे से प्यार कर रहे हैं, बीवी से प्यार कर रहे हैं, बीवी से प्यार कर लज्जत आती है नहीं आती, लज्जत की शिकलें चेंज हो जाती हैं, वो भी तो लज्जत है, लज्जत पे दुनिया चल रही है, लज्जत ना है तो कौन जाए किसी के पास, क्यों जी अगर आपको अपनी बीवी के साथ लज्जत ना है, आप पागल नींद खराब करेंगे। आपसे सोएंगे पूछते कौन चाहता है किसी के पास, ये कि लज्जत है जिसके लिए आदमी मरता है, लज्जत है ना सारी। तो आपने फरमाया कि बात ये कि सब चीज मैंने तरक किस लिए की है कि मुझे एक असल लज्जत मिल गई है, और मुझे किसी में लज्जत नहीं आती। वैसे वो क्या चीज है? फरमाया वो ऐसी चीज है कि सारी दुनिया की लज्जतों से अफजल लज्जत उसमें मौजूद है, और वो जिक्र अल्लाह है। ये बात तो समझ आ गई, पक्का यकीन आ गया इस बात में, हदीस भी है इस पर, इसमें ज्यादा तहमीद बांधने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना बताए कि अल्लाह के जिक्र से ज्यादा लज्जत किसी चीज में नहीं है। ये देख रहे, बाज़ औक़ात खाना खा रहा था आदमी, पेट भरते रहते हैं, लज्जत नहीं आती। मैं और आप जिक्र कर रहे हैं ना, बुरा ना मानना, जिक्र कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत पीछे एक चीज है कि बहुत जोर लगाना पड़ता है, सवाब बता बता के इस तरह जन्नत में उर मिलेगी, ये हमहल बन गया, ये फला हो गया, ये चीज हो गई। ये बहुत नीची सतह की बात है। किसी आदमी को खाना खिलाने घंटा लगाया, ये तू खाएगा तो ये मजा आएगा, तो फला आएगा, ये आएगा, ये होगा, वो चलो मैं ले लेता हूँ ये, ये किया ना। तो हम जो बैठे ना जिक्र में, हम इस चक्कर में बैठेंगे, हो रहे हैं ये मकान बनेंगे, महलात बनेंगे और फला, जब तक ये मजा ना आए तभी मैं सुनाऊ ना आपको, तब सुबह लसबान शुरू कर देंगे। ये चीज लज्जत, अब तो हम दुनिया में लज्जत चाहिए हमें, और इसकी लज्जत तो ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की लज्जत लिए जन्नत तक जाती है। पर लज्जत क्यों नहीं आती फिर? हम ही दूसरे चक्कर में बैठे, सही बता रहा। तो जिसको थोड़ी सी भी जर्रे के बराबर भी आ जाए ना, उस आदमी की कैफियत देखे, सबसे पहले उसकी कैफियत ये होती है, उसका जिस्म लज्जने लगता है, कुरान कहता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अल्लाह का नाम होता है। ये कुरान बता रहे हैं, जुलूद उनके जिस्म जो होते हैं, उनके जो जिस्म के बाल होते हैं, वो खड़े होने शुरू जाते हैं अल्लाह के जिक्र के साथ। अल्लाह ने थोड़ा सा टेस्ट बताया इसका। तो अब अल्लाह पाक ने ये जो कहते हैं कि इतना स्वाब होगा, इतना होगा, जन्नत होगा, गुना होगा, ये क्या है कि इन चीज इतना कन्विंस करके अल्लाह पाक ने हमें खाने पर बिठा तो दिया है। बोले सुभान अल्लाह, मेरी बात गौर से सुनना है, बिठा दिया है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि ये बात हमारे समझ में आ गई है कि इस अमर के बाद हमें बहुत कुछ इनाम मिलेंगे। बैठे इस चक्कर के अंदर, हमें इस चक्कर में बिठा तो दिया है, तो अल्लाह ताला कहता है जहां तक तो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि तुम इसकी असल लज्जत भी चखो, ताकि तुम मस्ती हो जाए। सुन, बेवकूफों, खाना मैंने तैयार कर दिया, सामने बिठा दिया, हसबुनल्लाह पढ़ाता हूँ, लाहौल लाहौत पढ़ाता हूँ, कैसे कैसे कलमात पे तुम्हें वृद्ध कराता हूँ, तो जहर है। लेकिन असल चीज तो तुम अभी नहीं आ पहुंचे, तुम्हें लज्जत क्यों नहीं आती, तुम्हें मजा क्यों नहीं आ रहा? मजा है, अभी ये भी है कि हमें मजा भी आता है, लेकिन इसका असल मजा है जैसे उन्होंने बुजुर्ग बताया, उसकी क्या वजह है? अब खाने में मजा नहीं आ रहा, गोश्त में मजा नहीं आ रहा, रोटी में, हम क्या करते हैं? फिर फौरन डॉक्टर के पास, क्यों जी? कि मजा नहीं आ रहा, मुंह पे रखते हैं, पता नहीं खाने का टेस्ट ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आता, पानी पीते हैं उसका टेस्ट पता चलता, क्यों? पता है कि यार बीमारी लग गई है ना, इसलिए नहीं आ रहा। खाने में टेस्ट तो मौजूद है, हलवे में टेस्ट मौजूद है, बिरयानी पकाएंगे नमक मिर्च मौजूद है, तो हमें क्यों नहीं उसका टेस्ट आ रहा? तो इधर इतनी बड़ी शहादतें मिल गई हैं, एक ही बुजुर्ग की शहादत दी है मैंने आपको कि मैं तो जिक्र इसलिए करता हूं, वो तो है इनाम जो मिलेगा, इसका टेस्ट ही ऐसे है कि मैं दिल ही नहीं करता इसको छोड़ दूं। बस समझ, तो अब क्या हो जाए कि हमें क्यों नहीं आ रहा? तो अब हमें आगे हम नहीं जाते, हमें फिक्र नहीं है इस चीज की, कभी हमने नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। मेरे भाई, अगर खुदा की किस्म टेस्ट आ जाए तो सारी रात हम जिक्र में बैठे रहे, बैठे रहे, सब कुछ छोड़ जाते। यहां तक कहा गया है कि जितने भी नेक आमाल हैं उन सब में टेस्ट रखे अल्लाह पाक, नमाज में, रोजे में, सब में टेस्ट है, लेकिन अल्लाह के जिक्र का टेस्ट उन सब से अलग है। ये बता रहा हूं, खुद ही से साबित है, सब टेस्टों से अलग है। क्यों? कि ये जो डिश जिक्र अल्लाह की जो है, ये अल्लाह ताला ने खुद बनाई है अपनी तरफ से। अल्लाह, इसकी खासियत तो ऐसी है कि अल्लाह ताला कहता है कि जब ये बंदा टेस्ट लेने लगता है और खाने लगता है, तो ये तो सिर्फ मैं जानता हूं और वो जानता है, फरिश्तों को भी नहीं पता होता। ये क्यों रो रहा है, ये क्यों जिस्म कांप रहा है इसका, क्यों हरकतें ऐसी कर रहा है, क्यों बेहोश हो रहा है, क्यों ये सब चीजें छोड़ रहा है, वो पागल हो गया है, सब चीज छोड़ता जाता है, टेस्ट आता जाता है वो छोड़ता जाता है उसको। आप समझे, तो अब कमी हमारे में क्या है कि अल्लाह ताला यहां तक ले आया, अब हमें टेस्ट नहीं आ रहा, तो जब टेस्ट नहीं आए तो क्या करते हैं, हम फिक्र करते हैं ना कि यार पेट से ही खराब है हमारा, तो हमें ये फिक्र नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, वक्त बहुत थोड़ा है, रिपोर्ट तो मिला कि यार इस टेस्ट को नहीं आ रहा, इसकी अब वजह है, पेट खराब क्यों होता है, वजह ही होगी ना पेट खराब होता है, अंदर बीमारी है ना कोई पेट में तो खराब हो गया, तो पता चलता है कि ये जो लज्जत हमें नहीं आ रही जिक्र की, इसकी वजह है कि कोई खराबी है हमारे अंदर, लज्जत मौजूद है उसमें, खराबी है, वो खराबी क्या है, सबसे बड़ी खराबी जो हमें जिक्र का टेस्ट नहीं आने देता, अल्लाह के जिक्र के नाम से मजा नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि वो गुनाह है इंसान की, क्या है, नाफरमानी है। जब तक बंदा गुनाह करता रहेगा उसको टेस्ट नहीं आएगा, नमाज का टेस्ट आता है, कुरान का टेस्ट आता है, ये तो इबादत है, जिक्र तो मुनफर टेस्ट है, ये सारा फटा जो होता है काम जो हमारा सारा खराब हो रहा है, जैसे पेट खराब होने की वजह से जिक्र हमें मजा नहीं आता खाने का, इसीलिए जब गुनाह इंसान करता है तो गुनाह की वजह से उसका सारे जो रूहानी खुराक है उसमें खत्म हो जाती है, मजा नहीं आता उसको। मेरे भाइयों हमें चाहिए ये कि हम इस पर फिक्र करें कि ऐसा जिक्र हो, अल्हम्दुलिल्लाह जब जिक्र करने बैठे तनहाई में जब अपनी तस्वीर करें अल्लाह की, तो बस आंख जारी हो रहे हो, जिस्म कांप रहा हो, अल्लाह की मोहब्बत अजीब एक कैफियत पैदा कर रही है इंसान के वजूद के अंदर, मस्त हो रहा हो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, गिनना रहा हो कहता हो या और आए और करें और करें, वक्त कम नजर आए, और सिलसिले बुजुर्ग थे ना हजरत उस्मान दामानी रहमतुल्लाह, जैसे ही बैठते थे मराकबे में ईशा के बाद तो भूल जाते थे टाइम क्या हुआ, तो सुबह फजर पर उनको उनके मुरीदीन उनके खादिम उठाते थे कि हजरत तहज्जुद का टाइम हो गया, आप उठिएगा, अजानें हो रही हैं, फिर उनको होश आता था। तो सब वजह इसकी ये कि सारी क्वालिटी हमारे में, हम क्या करें, अगर हम तरके गुनाह कर दें, गुनाहों को छोड़ दें, हराम छोड़ दें, निगाहों को बचाएं, जबान को बचाएं, जिस्म को बचाएं, और हर वो चीज जिसको गुनाह कहा जाता है छोटा बड़ा सब याद रखें, देखिए उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है, वरना ये वक्त जाया कर रहे हैं अपना, देखिए कितनी अच्छी चीज दी अल्लाह पाक ने हमें खाने के लिए, जिससे हम इतना मजा ले सकते हैं कि कुछ सोच भी नहीं सकता आदमी, तो ना आने की वजह यह है कि हमसे कहीं गलती हो रही है, या सुनत में गलती कर रहे हैं, नबी पाक किसी सुनत में हम गलती कर रहे हैं, या किसी बात में हमारी गलती है, जबान से है, निगाहों से है, हमारी इबादत में है, अपनी गलतियों को पकड़े, और जो जो गुनाह हम जानते हैं उनके तरफ लिस्ट बनाए कि यार ये गुनाह हमसे हो जाता है, ये गुनाह हमसे हो जाता है, उस पर कोशिश शुरू कर दें। जब इंसान कोशिश शुरू करता है तो फौरन अल्लाह उस गुनाह को खत्म करने की मदद करता है इंसान से। हम क्या कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया जी, हमने क्या किया जी, हम तो गुनाह ही नहीं किया, नहीं जी नहीं मैं मुझे कोई पूछे तो हजरत आप नहीं, मैं गुनाह क्या करता हूँ, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैंने कब गुनाह किया, मैं खाई कुछ, मेरा खाना तो सबसे हलाल है। इतनी एहतियात है खाने के अंदर भी, याद रखे सारा हमारा खाने से बनता है, एक लुकमा इंसान के अंदर चला जाए अब वो हराम का हो पूरी जिस्म को बर्बाद कर देता है वो। अल्लाह वालों को मिसाल तुम नाम ले लेके कभी शक हो जाता था कि ये लुकमा मेरा आराम का जा रहा है या उसमें कोई गलत मामला जा रहा है, तो कई हफ्ते तक वो अपने आप को वॉश करते थे अंदर से उल्टियां करके, इसको निकालें मेरी इबादत का रंग खराब कर रहा है, किस खराब हुई, उनको पता कैसे चलता था हमने गलत चीज का, ये जब वो जिक्र शुरू करते थे उसका टेस्ट खत्म हो जाता था, टेस्ट खत्म हो जाता था। दुनिया का सबसे बेहतरीन और लजीज टेस्ट इंसान को किस वक्त होता है, अल्लाह ने बुलाया हो, अल्लाह के नबी में हाजिरी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार اقدس میں حاضری ہو رہی ہو, موجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو, وہ درود پڑھ رہا ہو اور سرکار سن رہے ہوں, اس سے بڑا کوئی دنیا میں سین ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ, مجھے بتائیں وہاں کیا کیفیت ہونی چاہیے. کسی صحیح سے پوچھیں جس کو ٹیسٹ آتا ہے, سبحان اللہ, کیا کیفیت ہونی چاہیے. وہاں کیا کرتے ہیں, وہاں تو ٹیلی فون سن رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. کسی اس سے پوچھو نا کہ الحمدللہ, کہ جس کا زبان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے, کہ کیا ٹیسٹ ہوگا درود بھیجنے کا اس وقت سرکار سے. یہ نبی پاک سن رہے ہیں, آپ سنا رہے ہیں, السلام علیہ نبی کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ, سید رسول اللہ. پھر بھی ہم سوچتے کہ ہم بھائی کیا وجہ ہے, تو بھائی ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے اس کی نہ شکری نہ کرے. جب نعمت چلی جاتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار بڑا غلطی ہے, جب تک نعمت ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم اس کا شکر کیا ادا کریں کہ اللہ نے یہاں بٹھا دیا, ایک مجلس لگا دی, میں بھی آپ کو یہاں سے آ گیا, ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ, یہ پتہ چلے یہ فلاں مجلس کی فلاں مسجد کے اندر ذکر ہو رہا ہے, اور کسی اس نعمت کا پتہ چل جائے تو بھاگتا جائے, اتنی بڑی نعمت ہے یہ. ہم آ بھی جاتے ہیں تو قدر نہیں کرتے, اور جب یہ نعمت اٹھ جاتی ہے, یہ صبح کے ذکر ختم, شام کے ذکر ختم ہوتے ہیں, جب ہوا میں جاتے ہیں, تب انسان سوچتا ہے یار میں کتنا نقصان ہو گیا. ایک زندگی بدل جاتی ہے انسان کی, کیفیت بدل جاتی ہے, پھر ٹکرے مارتا اللہ کہتا ہے اب کیا, اب تو ناشکری کرتا تھا, دیکھ تجھے میں ذکر کی مجلسیں دیتا تھا اور تو گناہ کرتا تھا, تو حرام کھاتا تھا, تجھے میں ذکر کی مجلس دیتا تھا, یہ ناشکری ہے نا. ادھر ذکر کیا ادھر جا کے غیبت شروع کر دی, ذکر کیا ادھر بکواس بازی شروع کر دی, ذکر کیا ادھر جا کے غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیں, یہ کیا ہے؟ اس کے نام ناشکری ہے کہ میں تو تجھے اتنی اچھی اچھی جگہ پہنچایا, اب تو اس قابل نہیں ہے, اب میں تجھ سے اپنی نعمت واپس لے رہا ہوں تاکہ تجھے ٹیسٹ آئے ہی نہ کبھی زندگی کے. ایسی مسجد سمائی نہ ہو, نہ بیٹھے, اس وقت پھر احساس ہوتا ہے یار مارے گئے. پھر کیا ہوگا ان مجلسوں کے ٹائم میں, پھر کیا ہوگا, شیاطین ہمیں پھر لگا دے گا عام زندگی کے اندر. پہلے دن ہچاچ ہوگی, دوسرے دن ہچکچاہٹ ہوگی, ہیزیٹیشن ہوگی, تیسرے دن آدمی چلو یار یہ کر لیتے ہیں, وہ اس روٹین کے اندر نکل جاتا ہے دنیا کے اندر واپس, کیونکہ ہم نے ناشکری کی. اللہ کی اتنی خوبصورت چیز کی ناشکری کی, پتہ نا آپ کتنی بس بات تھی. پھر کہتا ٹھیک ہے جو میں نے تمہیں مجلسیں دی تھی نا, صبح بھی دی تھی, شام کو بھی دی تھی, بٹھاتا بھی تھا, اور تم اس کے بعد جا کے اس کی قدر نہیں کرتے تھے, جاؤ ٹھیک ہے میں تو پھر نکال دیتا ہوں یہاں سے. اب آدمی جناب کتنا بچا ہوتا ہے گناہ سے, بچا ہوتا ہے نا سب. ہم آ رہے ہیں کہ اللہ تب کیا کرتے ہیں, سزا مل چکی ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اسی روٹین میں انسان چلنا شروع ہو جائے گا, ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ دو مہینے کے اندر بالکل فارغ ہو جاتا ہے. جب آدمی ذکر پہ آنا بند کرتا ہے نا, ایک دن نہیں آ گیا دوسرے دن خود دل کرے گا چلو, یا پھر سستی کرتے ہیں, پھر اگلے میں سستی کرے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اس سستی, ایک دن کی سستی ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی. یہ تو جس پہ اللہ کرم فرما دے اور شیخ کی توجہ ہو جائے وہ کھینچ لاتا ہے, دوبارہ بٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کہ شاید پھر چانس دے دیں, لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا. پھر ایسے آدمی کو تو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر بلا دو, دوبارہ مجھے موقع دے رہا ہے. میں مر جاتا ہے اس کے درمیان میرا حال کیا ہوتا, بس سوچو کتنا ناشکر بندہ اٹھتا. کہ اگر ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے کہ ہم واپس چلے گئے تھے, ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے دنیا میں دوبارہ گئے, اللہ پاک اس کو دوبارہ لے آیا اس مجلس میں, تو اس کے لیے تو مقام اتنا شکر ہے کہ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اس دوران ہم مر جاتا تو کس حساب میں جاتا وہ شخص. ہم قدر نہیں کرتے اس چیز کی, یہ اللہ کی خاص مجلس ہے. اللہ کہتا ہے فذکرونی, اپنی طرف لیا ہے اس ذکر کو اللہ نے, اپنی طرف لیا ہے. نماز تیری ہے, قرآن تیرا ہے, تلاوت تیری ہے, لیکن ذکر میرا ہے. قرونی فذکرونی, مجھے یاد کر رہا ہے تو پرسنل لیا اللہ نے, پرسنل جواب دیتا ہے فذکرونی اذکرک, تو مجھے پرسنل یاد کر رہا ہے, میں تجھے پرسنل یاد کر رہا ہوں. ایسے وقت مل جائیں, صبح اور شام ملیں, یہ مجلسیں ملیں, ہم ان کے بعد جا کے گناہ کریں, بھائی یہ تو بہت بڑا ہے ناشکری. میں احساس دلا رہا ہوں اس چیز کا اللہ نہ کرے مجلس سے ہمارے سے ختم ہو جائے, اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. بھائیو نو دیکھا کو چار دس آدمی, آئیے دس آدمی جو ذکر کر رہے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کی برکت اتنی ہے کہ اس نے پورے عالم اسلام کو بلاؤں سے بچایا ہوگا. اللہ کی قسم کھا کے ذکر یہاں نہیں ہو رہا, یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. فرشتے سارے بھرے پڑے ہیں, جنات آئے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, اور ربیع اول کا ذکر ہے. سب فرشتے امامے پہنے ہوں گے سبز رنگ کے, ماشاءاللہ سبز رنگ چڑھے ہوں گے سخت ساری طرف, نبی پاک کا رنگ چڑھا ہوگا سب. اب ہم اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو اگر ہمیں نظر نہ آئے تو اس میں تو دنیا ہی نہیں ہے. فرض کرو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, لائٹ بند کر دیں, مجھے نظر آتی کمرہ ہی نہیں ہے, پتہ ہے ابھی لائٹ آف ہو جائے ہم کہیں جی کمرہ ہی نہیں ہے, کوڈ بھی نہیں ہے, یہ چیزیں بھی نہیں, کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی, پاگل ہے نا پھر بھائی. تو ہم نہیں دیکھ رہے, چیزیں تو موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, فرشتے موجود ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے میری مجلس میں تم یاد کیے جا رہے ہو, تم میرے سامنے بیٹھے ہو. ہم تو کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کس لیے دے رہا ہے تمہارے سامنے, ابھی میں پردہ نہیں اٹھاتا, لیکن میری باتوں پہ یقین کر لو. قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم, جس وقت تو یاد کرتا ہوتا ہے تو میں بھی یاد کر رہا ہوں, جب تم مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے مجلس میں یاد کرتا ہوں. جس میں کیوں نہیں یقین آتا, تو اتنی بڑا نعمت اللہ ہم سے چھین لے, اگلے ہفتہ نہ ہو یہ ذکر یہاں مجھے بتائیں, پھر ہمارے گناہ ہوں گے, گناہ نہیں ہوں گے, ہم ذکر میں آتے آتے رک گئے, یہ ہمارے گناہ عذاب میں آ گئے ہیں. اگر دوبارہ اللہ لے آئے فضل فرما دیا تو سبحان اللہ, شکر اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے اتنا بڑا چانس دے دیا, ہم نہیں کروں گا ایسا کام. کرتے ہیں بھائی توبہ, ایک دو گیا اللہ ناراض ہو گیا تو پھر منانا بہت مشکل ہوتا ہے, اللہ کو یاد رکھے گا, کھیلنا سمجھے بہت. جب جیسے جیسے اللہ انعام دیتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, قدر کرنی چاہیے. تو یہ ذکر کی مجلس جو ہے بہت اونچی چیز ہے, بہت. اب اس کا ٹیسٹ لینا ہے ہم, ٹیسٹ لینے کے لیے کیا کام کرنا ہے, شاباش سمجھ گئے مولانا صاحب, کیا کرنا ہے مجھے بولیں, جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے ٹیسٹ نہیں آئے گا, اور اگر ٹیسٹ آ گیا سبحان اللہ تو پھر زندگی ڈفرینٹ ہو جائے گی آپ کی, پھر تو دنیا آپ کو ڈھونڈتی پھرے گی, ہے کہاں کدھر گیا یار, نظر نہیں آ رہا بندہ, کہ نہیں یار مجھے کام پہ بھی دل نہیں کر رہا, مجھے بیوی اچھی نہیں لگ رہی, بچی بھی اچھی نہیں لگ رہی, بس حکم ہے شریک کر رہا ہوں یار. مزہ تو اب اس میں آتا ہے, بیوی مزہ ہے, مزہ اس میں آتا ہے سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا کریں ان شاء اللہ, ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سوموار کا دن ہے, بہترین رات ہے. اللہ پاک ہم سمجھ گئے آج بات کہ ہم ہے بہت میٹھی چیز, لذیذ چیز تو نے ہمیں دی ہوئی ہے, ہم اس کے ٹیسٹ سے محروم ہیں. ہم تو بس اس چکر میں پڑے ہیں بھی اتنا ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, وہ ثواب تو ہے, مزہ لو, گناہوں کو ترک کرو, گناہوں کو ترک کرو. جب اللہ ہائی مقام پہ نہیں لے کے جائے تو سب سے پہلے انسان کو پاک ہونا چاہیے گناہوں سے نکل, تب آپ ذکر میں بیٹھیں, سمجھے نا, جس آپ کو جو دیا ہے ذکر میں جائیں تو کیسے جانا چاہیے, ذکر میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے استغفار کریں اللہ سے, اللہ پاک تم نے مجھے بٹھا دی میں سوچ نہیں سکتا, پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں, پھر جو گناہ سامنے اللہ سے وعدہ کریں, اللہ تعالیٰ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں. کیونکہ اگر گناہ نہیں چھوڑ رہے آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ رہا ہوں, گناہ نہیں چھوڑ رہا, آفس پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذکر تو تم نے بٹھا دیا ٹھیک ہے, اور میں کیا کروں, تجھے چھوڑ دوں گا, تیرے ذکر کو چھوڑ دوں گا, میں ذکر گناہ نہیں چھوڑ سکتا, لذت کیسے آئے گی, آئی جس وقت ذکر میں بٹھایا اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں تسبیح دی ہے, رات کا وقت ہے آپ بیٹھے ہیں, پھر چلا میں اپنا ذکر شروع کروں, تو سب سے پہلے کس چیز کو سوچیں گے آپ, اونچا بولیں, اب گناہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے چھوڑ دوں گا, لیکن زندگی ہے, یہ زندگی ہے, اور روز یہ کرتے ہیں ہم کام. اب بیٹھے ہیں آئے مجلس میں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, مجلس میں آ گئے کلمات پڑھ رہے ہیں, تجھے تو چھوڑ دوں گا اللہ تعالیٰ, یہ ذکر بھی چھوڑ دوں گا, تیری مجلس کو چھوڑ رہا ہوں, میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا, جانے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہی ہے, میں تو کروں گا جی, میں بتائیں اب کیا سوچ رہے ہیں آپ, کریں گے جانے کے بعد وہ کام گندا, کیا اللہ کو چھوڑیں گے یا ذکر کو لیں گے, कितनी बड़ी बात है साहब, सब समझ रहे मेरी बात? मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं, कितनी सिंपल बात। हम ऐसे बेवकूफ हैं, आप तो नेक आदमी हैं, समझा मैं अपनी बात, कितने बेवकूफ आदमी है कि बैठे वो कहते हैं तेरी बात तो हम नहीं मानेंगे, हम गुना तो करेंगे, तुझे छोड़ देंगे, गलवाया जाए तो हमसे हसमुल्लाह पढ़ते रहेंगे लेकिन हम तुझे नहीं जानते। नहीं, आपसे हमने बिठा दिया अल्लाह ताला, ये तो मैं गुना करता हूँ, जो गुना याद आ गया मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं ये गुना नहीं करूँगा, मैं अभी छोड़ता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह, बस अस्करू नहीं, मैं तेरा जिक्र करता हूँ, मैं तुझे बख्शता हूँ, मैं तुझे जन्नत देता हूँ, मैं तुझे लज्जत देता हूँ। सुभान, ये है जिक्र का तरीका। जिक्र को ये नहीं कि भाई दस तस्वीर करनी, दस पूरी चलो जिक्र हो गया, बारह करनी बारह हो गई, पच्चीस जिक्र कर लिया, हाँ जिक्र नहीं है। जिक्र तो लेके उठे तो सुभान अल्लाह, दाढ़ी आंसू से भीगी हो, मदीने पहुंचो हो, मक्का पहुंचो हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जो अल्लाह कह रहा हो तो सामने उसके खाना काबा होना चाहिए, मुल्तजम नजर आ रहा हो उसको, तो सफर करके बैठे ऐसे बैठा करेंगे, अब मैं खाना काबा में बैठा हूँ, सामने मुल्तजिम है, अब मैं सबने माशाल्लाह देखे ये जगह अल्लाह के फजल से, बात तो नए नए देख के आए हैं ना हजरात, नहीं उनके चेहरे पर नूर है, उनके सदके से हमारी बख्शिश हो जाएगी माशाल्लाह, पीछे बैठे हैं या उमरा करके आए हैं लोग माशाल्लाह, इनके तो गुनाह बख्शे बख्शे हैं सब कुछ माशाल्लाह, तो ग्रेट लोग हैं, तो इनके इनके तो शुएं शुएं निकल रही नूर की माशाल्लाह। मदीने में गए, जो कदम मदीने में गए हो दिल करते हैं इनकी जूती को आदमी अपने सर पे रखे, कितनी खुशकिस्मत जूतियाँ होंगी जो मदीने का चक्कर काट के आ रही हैं, इनकी निगाहें कितनी हसीन होंगी जो मौजा शरीफ में देख के आ रहे हैं, खड़े सांप पड़ के आ रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं गुनाहगार लोग, हमारे पास किए कैसे, क्या नूरानी लोग हैं जो बैठे हैं इस वक्त हमारे सामने, हैरान होता हूँ ये हाथ है जिन्होंने जाके ना खाना काबू को छुआ होगा, नबी पाक की कारपेट को छुआ होगा, और ये वो माथे हैं जहाँ पे सरकार सजदा करते थे, वहां सजदा करके आए, इतनी बड़ी नेमत के बाद मुझे बताएं कि इनका दिल करेगा मैं गुनाह करूं, गुनाह छोड़ना चाहिए नहीं, इनको तो करना ही नहीं चाहिए वो गुनाह, मुझसे गीबत निकले ही ना किसी की, वो लज्जत कायम रखे अपने अंदर, लेकिन मुसीबत यह है कि फौरन आते गुनाह करते हैं सारी लज्जतें खत्म हो जाती है। इतना बड़ा काम अल्लाह ने करा दिया, सुभान अल्लाह, आप अंदाजा लगाए कि कैसे कैसे मौकों पर वहां सजदे किए होंगे, माशाल्लाह माथे टेके होंगे, जालियों को देखा होगा, गुंबद शरीफ को देखा होगा, फिर वहां फिरे होंगे, चले होंगे उन जगहों पे जहां नबी खुशियां फैली हुई है सरकार दोनों की, पता है इतना बड़ा खजाना इनके पास मौजूद हो और आके फिर एक गुनाह के साथ अल्लाह को नाफरमान करके खत्म कर, क्या कोई गारंटी है दोबारा चले जाए, क्या ये गारंटी है फिर जा सकते हैं, नहीं पता। एक दफा आपने देख लिया तो उसको उस आंख को जाया ना करें, जिस आंख ने जाके इन चीजों को देख लिया उसको जाया ना करें, उस जबान को जाया ना करें जहां बैठ के आपने अल्लाह का जिक्र कर लिया, जिन जो कलमात आपने वहां पढ़ लिए बैठ के, सुभान अल्लाह, जो दुरूद वहां पढ़ा है, सारी दुनिया में पढ़ते फिरे आप, नहीं हो सकता उसको मतलब, क्यों कि जहां वहां जो दुरूद पढ़ा है नबी आपके सामने बैठ के सुना है आपको दुरूद, सुभान अल्लाह, स्वाद आप खड़े हैं और सुन रहे हैं, कितनी जबरदस्त लोग हैं ये, पढ़ते हैं हजार दुरूद लेकिन उस दुरूद का मुकाबला नहीं, तो क्या इतनी बड़ी नेमत के आप गुनाह से खत्म करना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि हम दुरूद भी छोड़ रहे हैं, लज्जत भी छोड़ रहे हैं, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते, हम सॉरी हम तो वही करेंगे। मेरे भाइयों, ऐसे इंसानों के लिए जितना अल्लाह बुलंद करता रहता है, जितना ऊंचा करता जाए जितना ऊंचा करता जाए, आदमी को चाहिए कि उसी कदर गुनाहों को छोड़ता चला जाए, झुकता चला जाए दिन की तरह, नेमतों पे शुक्र करना हम सीखें तो कमाल हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल हो जाएगा, हमने नेमत शुक्र करेंगे तो सारी मस्जिदों में हम जिक्र करना शुरू कर देंगे, ना शुक्री करेंगे अल्लाह बंद करना शुरू कर देगा, आस्ते आस्ते उसको खत्म कर देंगे, फिर ढूंढते फिरते मजलूस जगहों को, ये ना शुक्रिया, तो पता ही चला कि सब चीज जो बर्बाद कर देने वाली चीज है वो क्या है, हम कहते छूटता नहीं जी है, अल्लाह छूट जाता है गुनाह नहीं छूटता जनाब, ठीक है, अल्लाह पाक मुझे भी آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ ہم گناہوں سے دور ہوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لذتیں حاصل کریں. اور جو اللہ نعمت دے دے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تو کرم فرما ہمیں ایسی ہم پہ نعمتیں بھیجتے ہی رہے. نعمتیں یہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اعمال صالح. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام سيد المرسلين شفيع المذنبين دعا يزين حبيب المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي المجيد وزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنه حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجعلنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يا منهم اللوات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.